आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृ वृंद, हम लोग आज से 5 तारीख तक बृहत भागवत अमृत के ऊपर चर्चा करेंगे। ये बृहत भागवत अमृत कई सालों से हम इसके ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं, तो जो लोग पिछले सत्र में नहीं थे उन लोगों के लिए इसकी थोड़ी भूमिका प्रस्तुत करना आवश्यक है कि महाराज परीक्षित, जो कि मृत्यु की प्रतीक्षा में 7 दिन तक श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रीमद् भागवत का आस्वादन कर रहे थे, जब श्रीमद् भागवत कथा समाप्त करके सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को मृत्यु के लिए प्रस्तुत करके चले गए हैं। अब परीक्षित महाराज की अंतिम घड़ी या अंतिम समय आ रहा है मृत्यु के लिए, और उन्होंने पूर्ण रूप से अपने मन को भगवान कृष्ण की लीलाओं में निमज्जित कर रखा है, तो उसी समय परीक्षित महाराज की माता उत्तरा वहां पर उपस्थित हुई और परीक्षित महाराज से प्रश्न किया, क्योंकि माता उत्तरा ये जानना चाहती थी कि सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई है और 7 दिन तक परीक्षित महाराज इसका श्रवण कर रहे थे और उनके पास अब अधिक समय नहीं रहा है क्योंकि मृत्यु किसी भी समय आ सकती है, उनका जो श्राप था कि सर्पदंशन में उनकी मृत्यु होगी तो तक्षक किसी भी समय आ सकता था, अब वो समय निकट हो गया था, तो इसलिए माता उत्तरा अति शीघ्र श्रीमद् भागवत कथा का जो सार है उसका श्रवण करना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने परीक्षित महाराज से प्रश्न पूछा था कि हे पुत्र, तुमने 7 दिन तक श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो भागवत की कथा श्रवण की है उसका सार संक्षेप में हमें बता दो जिससे कि मैं भी उपकृत हो सकूं। अब परीक्षित महाराज माता उत्तरा के प्रश्न का उत्तर देते हुए ये भागवत के जो सार है अमृत है, भागवत के अमृत भागवतामृत, उसको माता उत्तरा के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वस्तुतः यही भागवत का सार श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रस्तुत किया है। आराध्य भगवान ब्रजे सतनयम तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतं प्रमाण अमलं प्रेम कुमार्थ महां श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो ना परो। यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि हमारा आराध्य ब्रजेश तनय ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण हमारे आराध्य है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयम तद्धाम वृंदावन। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ब्रजराज नंदन कृष्ण हमारे आराध्य है, उसी प्रकार उनका धाम वृंदावन भी हमारा आराध्य है। और पुनः कहते हैं, रम्या काचित उपासना ब्रजवध वर्गेण या कल्पिता। और भगवान कृष्ण की आराधना की विधि क्या है? यदि भगवान कृष्ण हमारा आराध्य है तो उनको आराधना करने की विधि क्या है? ना ब्रजवध वर्गेण या कल्पिता, किस ब्रज के वधुओं ने, ब्रज की वधुओं ने अर्थात गोपियों ने जिस मार्ग की कल्पना की थी, जिस मार्ग से भगवान कृष्ण की आराधना की थी, वो कौन सा मार्ग था? प्रेम मार्ग। गोपियों ने प्रेम से भगवान कृष्ण की आराधना की थी, अर्थात भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है गोपियों का, ब्रजवासियों का, यही ब्रज प्रेम कहलाता है। तो उसमें भगवान कृष्ण जो संपूर्ण संसार के ईश्वर हैं, ये ऐश्वर्य ज्ञान उनमें नहीं था। ये लोग कृष्ण को अपना पुत्र, अपना सखा, अपना प्रेमी यही मानते थे। इसलिए उनका प्रेम स्वाभाविक प्रेम था। और कभी कभी भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में अपना ऐश्वर्य प्रदर्शन करने के उपरांत भी उनके प्रेम में वो ऐश्वर्य कभी भी बाधा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो। तो ऐसे जो ब्रज प्रेम है, और विशेष रूप से गोपियों ने जिस प्रेम भाव का अंगीकार किया था, प्रेम भाव का प्रदर्शन किया था, वही प्रेम से भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को आराधना करने की आवश्यकता है। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता, ब्रजवधुओं ने, गोपियों ने जिस मार्ग से भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया था और जिसके लिए भगवान कृष्ण को कहना पड़ा, न पा रहे हम निरवद्ध संहिता स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषा पिब। तो भगवान कृष्ण कहते हैं गोपियों को, हे गोपियां, तुम लोगों ने हमारी जो उपासना की है, तुम लोगों ने मेरे प्रेम के कारण अपना सर्वस्व त्याग दिया है, अपना घर, अपना संसार, अपना परिवार, मान सम्मान सब कुछ त्याग दिया केवल मुझे संतुष्ट करने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए। और इस प्रेम का प्रतिदान प्रदान करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। यदि मैं ब्रह्मा की आयु तक भी प्रयास करूं, फिर भी तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान मैं नहीं दे सकता। या समृष्ट दुर्जर गृह श्रृंखला, तुम लोगों ने जो दुर्जर गृह श्रृंखला, गृह श्रृंखला, ये गृह का बंधन, इसको काटना बहुत कठिन है, किंतु गोपियों ने भगवान कृष्ण के लिए एक क्षण में घर का बंधन को तोड़ दिया था। ये उनका सर्वोत्तम त्याग है भगवान कृष्ण के प्रति। इसलिए भगवान कृष्ण अपने को ऋणी मानते हैं गोपियों के पास। तो ये भगवान कृष्ण जिस प्रेम के वशीभूत होते हैं, गोपियों ने जिस प्रेम का प्रदर्शन किया था, वो ब्रज प्रेम वही भगवान के, भगवान की आराधना का मार्ग। तो ब्रजवधु वर्गेण यह कल्पित श्रीमद भागवतम प्रमाण अमलम, और इसका प्रमाण श्रीमद भागवतम है। भागवत को इसलिए अमल पुराण कहा गया है, जिस पुराण में कोई दोष नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इस जो भागवत का जो तत्व है, सार है कि भगवान कृष्ण हमारे आराध्य हैं और उनका धाम हमारा भी आराध्य है, और उनको उनकी आराधना का मार्ग प्रेम मार्ग। तो इस तत्व को प्रदर्शित करने के लिए परीक्षित महाराज ने जो श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, उसके सार के रूप में इसी तत्व को उन्होंने प्रदान किया माता उत्तरा का। तो हम बृहत भागवत अमृत के जो प्रथम खंड है, जिसमें हम लोग कई सालों से सुन रहे थे कि नारद मुनि भक्तों की खोज में, सर्वश्रेष्ठ भक्तों की खोज में निकलते हैं, और अंत में जाकर द्वारका में अनुभव करते हैं कि गोपियों का प्रेम किस प्रकार सर्वश्रेष्ठ है, और भगवान श्री कृष्ण द्वारका की रानियों के बीच में रहते हुए भी गोपियों को भूल नहीं पाए, उनका स्मरण करते हुए, उनके प्रेम का स्मरण करते हुए भगवान कृष्ण रात में स्वप्न देखते हैं और क्रंदन करते हैं, रोते हैं। तो उससे ये प्रमाणित हुआ कि गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ प्रेम, और उस प्रेम के माध्यम से उन्होंने भगवान कृष्ण की आराधना की थी, जिसको भगवान कृष्ण द्वारका में भी भूल नहीं सके। इसलिए इससे प्रतिपादित हुआ था कि गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त, भगवान कृष्ण के जितने भक्त हैं, तो कई तरह के भक्त, नारद मुनि हर तरह के भक्तों के पास गए थे। ये प्रयाग के ब्राह्मण से आरंभ करके ब्रह्मा, शिव और प्रहलाद महाराज, पांडवगण, द्वारका के भक्तगण, हनुमान जी, ये सभी के पास गए थे, और ये सभी भक्त हैं भगवान के, किंतु सर्वश्रेष्ठ भक्त गोपियां ये प्रमाणित हुए। और अब द्वितीय खंड में परीक्षित महाराज माता उत्तरा को किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, वो माधुर्य के निलय हैं, अर्थात घर, माधुर्य के मूर्तिमंत स्वरूप हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, और भगवान कृष्ण के जितने स्वरूप हैं, उनके जितने विस्तार रूप हैं, उनमें से कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ आकर्षक रूप है। यहां तक कि भगवान विष्णु भी कृष्ण के रूप से मोहित हो जाते हैं, इतने आकर्षक हैं भगवान से कृष्ण। तो सारे जीवों का कृष्ण के प्रति मोहित होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, स्वयं भगवान के अवतार, भगवान के विस्तार रूप भी मोहित हो जाते हैं कृष्ण के माधुर्य से, उनके सुंदर रूप से। और दूसरे अवतारों की बात छोड़ दीजिए, स्वयं भगवान कृष्ण भी अपने रूप का दर्शन करके स्वयं मोहित हो जाते हैं, दूसरों की बात क्या कहा। तो भगवान श्री कृष्ण जब अपने रूप का प्रतिफलन मणिमय स्तंभ पर देखते हैं, तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा सुंदर रूप हमने तो पहले कभी नहीं देखा है। अपरिकलित पूर्व का चमत्कार कार्य, ऐसा चमत्कार रूप पहले मैंने कभी नहीं देखा है। स्फुरति मम गरियान ये सब माधुर्य पूरा, इस रूप में जो माधुर्य है ऐसा लगता है कि मेरे माधुर्य से इस रूप का माधुर्य कई गुना अधिक है। तो भगवान कृष्ण जब इस प्रकार सोचने लगते हैं, पुनः उनको ध्यान में आता है कि मैं तो असमर्थ हूं। असमर्थ का अर्थ है असम और ऊर्ध्व। जो कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की समता नहीं कर सकता, समकक्ष नहीं हो सकता, इसलिए भगवान को असम कहा गया। और ऊर्ध्व कोई भगवान कृष्ण से बढ़कर भी नहीं हो सकता किसी भी ऐश्वर्य, इसलिए भगवान कृष्ण को असमर्थ कहा गया। तो भगवान कृष्ण सोचने लगते हैं, मैं जो ये रूप देख रहा हूं मणिमय स्तंभ पर, ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसा माधुर्यमय रूप हमने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि मेरे सौंदर्य से, मेरे माधुर्य से इस रूप का सौंदर्य और माधुर्य अधिक है। स्फुरति मम गरियान ये सब माधुर्य पूरा। तो भगवान कृष्ण सोचते हैं कि मैं तो असमर्थ हूं, अर्थात कोई भी व्यक्ति मेरी रूप या माधुर्य की समता नहीं कर सकता या मुझसे बढ़कर नहीं हो सकता, तो फिर ये रूप किसका है। अयं अहं अपि हंत प्रेक्षयं लुब्ध चेता, तो क्या ये रूप मेरा ही है, भगवान कृष्ण सोचते हैं, क्योंकि मुझसे तो कोई अधिक सौंदर्यशाली या माधुर्यशाली नहीं हो सकता, तो ये रूप क्या मेरा है। यदि मेरा ये रूप है, ऐसा माधुर्यमय रूप, माधुर्य का निलय, तो मैं इस रूप को देखना या आस्वादन करना चाहता। प्रेक्षयं लुब्ध चेता, मेरे मन में ये लोभ उत्पन्न हो रहा है ऐसे रूप का आस्वादन करने के लिए। किंतु मैं अपने रूप का कैसे आस्वादन कर सकता, क्योंकि व्यक्ति अपने सौंदर्य का आस्वादन नहीं कर सकता, दूसरे लोग उसके सौंदर्य का आस्वादन कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण सोचते हैं कि मैं अपने स्वरूप का आस्वादन कैसे कर सकता। सर्वसंग उपभोक्तम कामये राधिके, यदि मुझे मेरे माधुर्य का आस्वादन करना है तब मुझे काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है कि मेरे रूप का आस्वादन सबसे अधिक कौन करता है। श्रीमती राधारानी, श्रीमती राधारानी भगवान कृष्ण के माधुर्य का सर्वश्रेष्ठ आस्वादन करती है। इसलिए भगवान कृष्ण सोचते हैं कि यदि मेरे माधुर्य का आस्वादन मुझे करना है तो इस रूप में नहीं हो सकता। कृष्ण रूप में मैं अपने माधुर्य का आस्वादन नहीं कर सकता, इसलिए मेरा मन यही कहता है, यही लोभ उत्पन्न होता है मेरे मन में कि मैं श्रीमती राधारानी के समान किस प्रकार मेरे रूप का आस्वादन, मेरे माधुर्य का आस्वादन कर सकूं, इसलिए मुझे राधारानी का भाव अंगीकार करना पड़ेगा। और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, राधारानी के भाव को लेकर और उनकी अंग कांति को लेकर, वर्ण को लेकर। श्रीमती राधारानी तत्त कांचन गौरांगी और चैतन्य महाप्रभु तत्त कांचन गौरांगी। यद्यपि स्वयं कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु, किंतु राधारानी के भाव में, और कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं उस भाव में। और यही कारण है कि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में जब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कृष्ण से विरह का अनुभव करते थे राधा रानी के भाव में। और इस प्रकार विरह का अनुभव करते हुए हे कृष्ण हे हरि ये पुकारते थे। तो ये भाव हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं तो ऐसा भाव उत्पन्न होना चाहिए कि भगवान से कृष्ण से विरह का अनुभव होना चाहिए, तब हमारी व्याकुलता में वृद्धि होगी। और हम भगवान कृष्ण को प्राप्त करने में समर्थ हों। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम जप या कीर्तन करते हैं ये भक्त की पुकार है। भक्त कृष्ण की कृष्ण को पुकारता, राधा रानी को राधा कृष्ण को पुकारता, और उसमें जितनी व्याकुलता होगी जितनी विरह का जितना विरह का अनुभव होगा, जैसे कहा गया है कि बच्चा जब रोता है माँ पास में नहीं है तो बच्चा रोता है माँ को प्राप्त करने के लिए, और उस समय माँ क्या करती है, बच्चा रोने पर माँ सब काम छोड़ करके दौड़ जाती है, बच्चे को उठा लेती है गोद। तो उसी प्रकार भक्त जब इस प्रकार रोएगा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए कृष्ण को पुकारेगा तो कृष्ण कृपा करके उसको अपना कर लेंगे उस भक्त। तो परीक्षित महाराज ने इसी तात्पर्य को बताया माता उत्तरा को कि भगवान कृष्ण कैसे हमारे आराध्य हैं, और भगवान कृष्ण के जितने भी रूप हैं सारे रूपों से कृष्ण रूप कैसे सर्वश्रेष्ठ है, और भगवान कृष्ण के जितने विस्तार रूप उनके जितने भी धाम हैं उन धामों में भगवान कृष्ण का धाम जो गोलोक वृंदावन है वो किस प्रकार सर्वश्रेष्ठ है, ये द्वितीय खंड में उसको प्रतिपादित किया गया है। तो यही वस्तुतः भागवत का सार है, अमृत है। तब द्वितीय खंड में हम देखते हैं कि गोप कुमार जो गोवर्धन का एक गोपाल बालक, तो गोप कुमार जाते हैं भगवान के कई रूपों का भिन्न भिन्न लोकों में दर्शन करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से दशाक्षर गोपाल मंत्र को प्राप्त किया था, और उस मंत्र का जाप करते हुए मंत्र के प्रभाव से वो एक लोक से दूसरे लोक में चले जाते थे, उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती थी। तो इस प्रकार गोप कुमार स्वर्गलोक, पहले तो इस पृथ्वी लोक में जगन्नाथपुरी आदि गए थे, वहां जगन्नाथ जी का दर्शन किया था, उनकी सेवा करने का अवसर आदि प्राप्त हुआ था, वहां से फिर स्वर्गलोक में गए थे। स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपोलोक और ब्रह्मलोक तक भी पहुंच गए थे, वहां भी संतुष्ट नहीं हुए। यद्यपि ब्रह्मलोक में सहर्ष शीर्ष पुरुष का दर्शन हुआ, फिर भी वो अपने आराध्य मदन गोपाल के प्रति आकृष्ट थे गोप कुमार, कि ये गोवर्धन के गोपाल बालक थे इसलिए भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होना उनके लिए स्वाभाविक था। क्योंकि वो कृष्ण के प्रति आकृष्ट थे, मदन गोपाल के प्रति, इसलिए ब्रह्मलोक में भी सहस्र सिरसा पुरुष जो ब्रह्मा जी के आराध्य हैं, उनका दर्शन करने के उपरांत भी वो संतुष्ट नहीं हुए और वो आगे निकले। ये ब्रह्मांड के जो आवरण है, सत्ता आवरण, उसको भेद करके वो महाकालपुर में पहुंचे हैं। महाकालपुर जो मुक्ति धाम है, जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं और ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ऐसे लोग इस धाम को प्राप्त होते हैं। तो गोप कुमार अब उस धाम में पहुंचे हैं, महाकालपुर में, और वहां उन्होंने भगवान का दर्शन भी किया, किंतु दर्शन से पहले भगवान के शरीर से, महाकाल के शरीर से जो ज्योति निर्गत होती थी, उस ज्योति से वो भगवान का दर्शन नहीं कर पाए थे। वो ज्योति का दर्शन केवल कर रहे थे पहले, और वस्तुतः निर्विशेषवादी लोग यही करते हैं, क्योंकि भगवान के प्रति उनके मन में भक्तिभाव नहीं है, इसलिए वो भगवान का दर्शन कर नहीं पाते हैं। उनके शरीर से जो ज्योति निर्गत होती है, उस ज्योति का ही दर्शन करते हैं और कहते हैं कि भगवान ज्योति स्वरूप है, उनका कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, वो निराकार। इसलिए इस निराकार बात का प्रचार बहुत है संसार में, किंतु वस्तुतः भगवान निराकार नहीं है। जो ज्योति है, जो ज्योति का ध्यान करते हैं निराकारवादी या निर्विशेषवादी, क्योंकि उनको पता नहीं कि भगवान का रूप है, तो केवल ज्योति का ही दर्शन करते हैं, ज्योति का ही ध्यान करते हैं और ज्योति में लीन होना चाहते हैं। किंतु जीव कभी भगवान में लीन नहीं हो सकता, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ममेवांश जीव लोके जीव भूत सनातन। जो जीव है ये भगवान का नित्य अंश विशेष है, तो जीव कभी भी अपने को विलीन नहीं कर सकता, वो अपना अस्तित्व अवश्य रखेगा, क्योंकि वो सनातन है, नित्य है। यद्यपि वो ज्योति में लीन होते हैं, फिर भी उनका अस्तित्व बना रहता है, किंतु जो भगवान के रूप पर विश्वास करते हैं कि भगवान का सुंदर स्वरूप है, और यह सत्य है, क्योंकि भगवान अपने दिव्य स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। जो भक्त नहीं है, भगवान उनको दर्शन देने के लिए बाध्य नहीं है। कभी कभी लोग जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, कहते हैं कि भगवान नहीं है, यदि है हमें दिखा दो, किंतु ऐसा कोई भगवान का दर्शन नहीं कर सकता जिनका विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर। भगवान उनको दर्शन देने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, नाहं प्रकाश सर्वसह योग माया समावृत मूढ़ यंग नाभिजाना। जो मूर्ख व्यक्ति हैं, वो नहीं जान सकते, क्योंकि उनके लिए मैं अपनी योग माया के द्वारा समावृत रहता, ढका हुआ रहता, ये लोग मुझे देखकर भी देख नहीं सकते, योग माया समावृत। तो भगवान जिसको चाहे उसको दर्शन दे सकते हैं, सभी को दर्शन देने के लिए बाध्य नहीं है। और भगवान किसको दर्शन दे सकते हैं? अपने भक्त को ही दर्शन दे सकते हैं, जो उनके रूप पर विश्वास करता है, उनके रूप प्रति आकृष्ट है। तो महाकालपुर में जब गोप कुमार पहुंचे हैं, तो पहले तो उन्होंने भगवान की ज्योति का दर्शन किया। वो देख नहीं सके भगवान के रूप को, उनकी आंखें चौंधिया गई, जैसे आंख बंद हो जाता है अति उज्जवल ज्योति में। और पुनः क्योंकि वो मदन गोपाल के भक्त हैं और भगवान के रूप का दर्शन करना चाहते थे, इसलिए उनके लिए भगवान के जो ज्योति है वो अपसरित हो गई। और ये गोप कुमार ने दर्शन किया भगवान के रूप का। किंतु जब वो दर्शन कर रहे थे तो कभी उनकी ज्योति में मिल जाते थे, फिर निकल आते थे, ऐसा चलता था। भगवान जैसे अपने चरण के जो नाखून है उसकी ज्योति से गोप कुमार की रक्षा की, अपनी ज्योति में लीन होने से, क्योंकि ये भगवान के चरण कमल के प्रति आकृष्ट थे। तो इस प्रकार मुक्ति धाम में गोप कुमार भगवान का दर्शन करके आनंद प्राप्त हो रहे थे, और उसी समय उन्होंने सुना था ये कुछ वाद्य यंत्र बज रहा है और कुछ गाना आदि चल रहा है, ये ध्वनि उन्होंने सुनी। तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये ध्वनि कहां से आ रही है। तो कुछ देर बाद उन्होंने देखा था कि एक बैल पर एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, और वो देखने में तो बहुत सुंदर थे, जटाजुट से विभूषित थे, हाथ में त्रिशूल था, और वो दिगंबर थे, अर्थात उल्लग्न थे। दिगंबर उसको कहा जाता है, दिक अर्थात दिशा जिसका वस्त्र, अंबर अर्थात वस्त्र। तो चार दिशा हैं, 10 दिशा हैं, तो दिशा का क्या रूप है? शून्य है। तो शून्य जिसका वस्त्र है अर्थात वो उल्लग्न थे। और उन्होंने उनके मस्तक में अर्धचंद्र सुशोभित हो रहे थे और गंगा जी भी सुशोभित हो रही थी, और उनके वक्षस्थल पर हड्डियों की माला थी। तो ये जो हड्डियों की माला थी, ये जिस किस व्यक्ति की हड्डियों की माला नहीं थी, क्योंकि शिवजी परम वैष्णव थे, इसलिए जो वैष्णवगण शरीर त्याग देते हैं, क्योंकि शिवजी श्मशान में निवास करते हैं, हम लोग जानते हैं, जो वैष्णवगण शरीर त्याग देते हैं उनकी हड्डियों की माला शिवजी पहनते हैं, क्योंकि वो वैष्णव श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों के प्रति उनका इतना अनुराग है, प्रेम, कि अपने वक्षस्थल पर उनकी हड्डियों की माला धारण। तो गोप कुमार ने देखा, उनको पता नहीं था, क्योंकि शिवजी को उन्होंने देखा नहीं था पहले। तो वो बैल पर नंदी पर बैठ करके आ रहे हैं, और उनकी गोद में एक स्त्री, बहुत सुंदर स्त्री, गौरी, पार्वती जी बैठी, और उनके आसपास सब उनके अनुचर वर्ग हैं, और उन अनुचरों में श्रेष्ठ थे नंदीश्वर। तो ये लोग सब वाद्य बजा रहे हैं और गाना गा रहे हैं, और कोई शिव जी के मस्तक पर छत्र धारण किया है किसी ने, कोई चामर व्यंजन कर रहा है। इस प्रकार शिव जी वहां पर आकर पहुंचे तो इनको पता नहीं था गोप कुमार को ये कौन है, जबकि ये बहुत आकृष्ट हुए शिव जी को देखकर। और यद्यपि शिव जी का व्यवहार साधारण व्यक्ति जैसा व्यवहार नहीं था, तो गोप कुमार ने सोचा कि ये कोई महान व्यक्ति हो सकता है, अन्यथा इस प्रकार कौन सा व्यक्ति अपने एक स्त्री को गोद में बैठाए हुए चल रहा है और फिर स्वयं उलग्न है, तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति कोई महान व्यक्ति होंगे, क्योंकि इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति अपनी काम वासना को रोक नहीं सकता, किंतु ये काम वासना को रोके हुए हैं, इसलिए शिव जी को धीर कहा गया है। ये कभी अधीर नहीं होते हैं काम वासना से। तो शिव जी इस प्रकार जब जा रहे थे तो गोप कुमार ने उनको प्रणाम किया कोई महान व्यक्ति समझकर, और जो नंदीश्वर उनके अनुचरों में मुख्य थे उनसे पूछा कि ये व्यक्ति कौन है। तो नंदीश्वर ने पहले तो हंसा कि ये कैसा व्यक्ति है कि शिवजी को नहीं जानता है, जो सारा संसार जानता है शिवजी को, फिर भी नंदीश्वर ने गोप कुमार से कहा कि आप शिवजी को नहीं जानते हैं, ये जगदीश्वर है, ये जगत के ईश्वर है और भुक्ति मुक्ति प्रदायक है, ये भुक्ति भी दे सकते हैं और मुक्ति भी दे सकते हैं, भुक्ति अर्थात भोग की कामना को पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए शिव जी के मंदिर में बहुत भीड़ होती है, लोग जाते हैं भोग मांगने के लिए, और कोई भुक्ति कामी कोई मोक्ष कामी जाता है शिव जी के पास, शिव जी प्रदान कर देते हैं मुक्ति। किंतु यदि कोई भक्त शिव जी के पास जाता है, क्योंकि शिव जी परम वैष्णव है, एवं कहा गया है वैष्णवानं च वल्लभ, शिव जी वैष्णव के प्रिय हैं, इसलिए प्रिय है कि वो परम वैष्णव है, भगवान के परम भक्त, और भक्ति ही ऐसे लोगों को प्रदान करते हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं किंतु शिव जी से कुछ नहीं मांगते, अर्थात जो निष्काम भक्त हैं शिव जी के, कोई कामना नहीं रखते हैं शिव जी की, केवल आराधना करते हैं, तो शिव जी प्रसन्न होकर ऐसे भक्तों को भगवान की भक्ति ही प्रदान करते हैं। तो ये शिव जी की अकपट कृपा है, और जिसको भोग मुक्ति आदि प्रदान करते हैं ये कपट कृपा है शिव जी की। वस्तुतः ये सब अस्थाई है, किंतु यदि कोई शिव जी की कृपा से भक्ति को प्राप्त कर लेता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो इसलिए शिव जी को वैष्णवानं च वल्लभ कहा गया, वैष्णव के प्रिय है। तो नंदीश्वर ने बताया था गोप कुमार को कि ये मुक्ति धाम में शिव जी कैसे इधर कहाँ जा रहे हैं। तो नंदीश्वर ने कहा कि वस्तुतः शिव जी यहाँ मुक्ति धाम में रहते नहीं है, कभी कभी आ जाते हैं इधर, किंतु उनका धाम जो है ये शिवलोक है, जो इसके ऊपर है, मुक्ति धाम के ऊपर है शिवलोक। और शिवलोक जो है ये कभी नष्ट नहीं होता है, ये नित्य धाम है। और शिव जी वहां नित्य निवास करते हैं अपने परिकरों के साथ। अब शिव जी कहां जा रहे हैं अपने पार्षदों के साथ, और सारे पार्षद तो उनके साथ नहीं है, थोड़े पार्षद हैं, तो ये थोड़े पार्षदों के साथ कहां जा रहे हैं। तो नंदीश्वर ने कहा कि ये जो भूलोक में कैलाश पर्वत है तो शिव जी वहीं जा रहे हैं। तो ये कैलाश पर्वत ये भूलोक में, या उसको हम भूवरलोक भी कह सकते हैं, तो ये भूवरलोक भूलोक से ऊपर है, तो ये गंधर्व लोक है। भूवरलोक जो है ये गंधर्व लोक माना जाता है। तो कुबेर ये गंधर्व है, गंधर्वों के मुख्य हैं, यक्ष मुख्य। तो ये कुबेर ने शिवजी को एक कैलाश लोक प्रदान किया है। एक कैलाश कुबेर का राज्य, किंतु प्रेमवश कुबेर ने शिवजी को ये कैलाश लोक प्रदान किया है, इसलिए कुबेर को प्रसन्न करने के लिए शिवजी कभी कभी इस कैलाश लोक में भी निवास करते हैं अपने धाम से आकर। किंतु उनका नित्य धाम शिवलोक है, कैलाश उनका नित्य धाम नहीं है। तो ये अब शिवजी कैलाश जा रहे हैं, नंदीश्वर ने बताया गोप कुमार। तो शिवजी कैलाश जा रहे हैं और गोप कुमार ने सोचा कि नंदीश्वर ने कहा कि शिवजी जगदीश्वर है, जगत के ईश्वर हैं और कृष्ण से अभिन्न, तो वो थोड़ा द्विधा में पड़ गए कि ये कैसा है। तो मन में सोचने लगे गोप कुमार कि मेरे आराध्य मदन गोपाल हैं और शिवजी ये शिवलोक में रहते हैं, और नंदीश्वर कह रहे हैं कि ये जगत के ईश्वर हैं, ये कैसे संभव है। यद्यपि वो आकृष्ट थे शिवजी के प्रति, फिर भी उनका मन सदा सर्वदा मदन गोपाल में लगा रहता था। तो गोप कुमार ने सोचा कि शिवजी जब स्वयं भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं और दूसरों को भक्ति प्रदान करते हैं, तो ये कैसे संभव है। तो नंदीश्वर ने बताया कि वस्तुतः शिवजी यद्यपि भगवान की भक्ति करते हैं, ये लोगों को सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, शिव जी लोगों को शिक्षा देते हैं स्वयं भक्ति आचरण करके और स्वयं भक्ति का प्रचार करते हैं संसार में। किंतु वो भगवान से अभिन्न है इस दृष्टि से कि ये भगवान के आवेश अवतार, क्योंकि भगवान से शिवजी कोई एक उनका विस्तार रूप है और एक विशेष कार्य के लिए शिवजी आए हैं। और वो कार्य क्या है कि संसार का जब ध्वंस होता है शिवजी यह कार्य करते हैं। ये तमोगुण का कार्य है, ध्वंस जो है ये तमोगुण का कार्य है और शिव जी को ये करना पड़ता है भगवान के आदेश। इसलिए शिव जी के जो आराध्य हैं वो संकर्षण है, संकर्षण के विस्तार रूप अनंत शेष हैं जिनकी पूजा करते हैं शिव जी। तो इस प्रकार गोप कुमार जब सोच रहे थे कि ये कैसे संभव है कि शिवजी भगवान के साथ समान है या अभिन्न है, तो पार्वती देवी जो वहां उपस्थित थे उन्होंने गणेश की ओर इशारा किया कि तुम इनको बता। उसी समय वस्तुतः गणेश को बताने से पहले की घटना है जो नंदीश्वर बता रहे थे। तो नंदीश्वर कह रहे थे कि सदैव का रूप भगवान शिवोयम वसन सलोके प्रकट सदैव। तो पहले नंदीश्वर बता रहे हैं कि शिवजी कैसे भगवान है या भगवान से अभिन्न है। तो कह रहे हैं कि शिवजी सदैव का रूप, तो शिवजी सदा सर्वदा एक रूप में रहते हैं, क्योंकि यहां मुक्ति धाम में गोप कुमार ने देखा है कि भगवान कभी निर्विशेष बन जाते हैं कभी सविशेष या शरीर धारण करते हैं, ऐसे मुक्ति लोक में चलता रहता है महाकालपुर में। इसलिए नंदीश्वर ने कहा कि शिवजी ऐसा नहीं करते, शिवजी अपने धाम में एक रूप में रहते हैं, रूप परिवर्तन नहीं करते हैं, सदा एक रूप भगवान शिवोयम वसन स्वलोके प्रकट है सदैव। और शिवजी क्या करते हैं अपने लोक में अर्थात शिव लोक में सदैव प्रकट रहते हैं, कभी अप्रकट नहीं होते। और विलोक्यते तत्र निवास तुष्टे तदेक निष्ठे सततं निजैष्ठे। और जो शिवजी के भक्त हैं जो शिवजी के धाम को प्राप्त करते हैं, तो शिवजी के भक्त जो निष्काम भक्त होते हैं शिव जी के, जो सकाम भक्त हैं वस्तु तो शिव जी के भक्त नहीं है, वो जाते हैं कुछ मांगने के लिए, किंतु जो निष्काम भक्त हैं शिव जी के और शिव जी को भगवान से अभिन्न मानते हैं, ये लोग मृत्यु के पश्चात शिवलोक में जाते हैं, उनकी गति शिवलोक की गति होती है। तो ऐसे लोगों को विलोक्यते तत्र निवास तिष्ठे। शिव जी ऐसे लोगों को अपना दर्शन देते हैं, सदा सर्वदा अपना दर्शन देते हैं अपने भक्तों को। तो उनके जो भक्त होते हैं वो एकनिष्ठ भक्त शिव जी के, वो शिव जी का रूप दर्शन करके हर समय संतुष्ट रहते हैं शिवलोक में। स्वाभिन्न भगवत भक्ति लांपट्य ग्रायन इव। और शिव जी क्या करते हैं अपने लोक में, उनके जो अनुचर वर्ग है, जो भक्त है, जो शिवजी को भगवान से अभिन्न मानते हैं और उनमें कोई कामना नहीं है, ऐसे भक्तों का कैसे उद्धार करते हैं? तो नंदीश्वर कहते हैं, स्व अभिन्न भगवत भक्ति लांपट्य ग्रहाया नैव। जो उनसे जो अभिन्न भगवान है उनकी भक्ति के लिए, उनकी भक्ति प्रदान करने के लिए, भगवान की भक्ति प्रदान करने के लिए शिव जी क्या करते हैं, सदा रमयंती शिवान नृत्य गीतादि कौतुक। शिव जी अपने अनुचर वर्गों के साथ, पार्षद वर्गों के साथ सदा सर्वदा अपने लोक शिव लोक में नृत्य गीत में रमण करते हैं, अर्थात शिव लोक में ये नृत्य गीत चलता रहता। ये नृत्य गीत क्या है? गीत है भगवान का नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शिव जी भी ये नाम संकीर्तन करते हैं भगवान, और किसके लिए करते हैं? अपने भक्तों के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए। तो शिव जी स्वयं भगवान के नाम कीर्तन में रमण करते हैं, और जब भगवान का नाम कीर्तन करते हैं तो उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार परिलक्षित होता है, वो प्रेम से आविष्ट हो जाते हैं। अब प्रेम में आविष्ट होने के कारण शिव जी क्या करते हैं? नृत्य करने लगते हैं, सर्व समक्ष वो नृत्य करने लगते हैं। और ये इसके साथ साथ अपने भक्तों को भी नृत्य गीत में प्रेरित करते हैं। और ये सभी शिव जी के साथ, शिव जी के भक्तगण भगवान का नाम संकीर्तन और नृत्य करते रहते शिवलोक। भगवंतं सहस्राप्स्यं शेष मूर्ति निज प्रियम। जो सहस्र शीर्ष पुरुष जो हैं, शेष मूर्ति अर्थात अनंत शेष जो शिव जी के प्रिय हैं और आराध्य हैं, नित्यं अर्चयति प्रेमना दासवत जगदीश्वर। तो यद्यपि वो भगवान से अभिन्न है, शिव जी अपने भक्तों को शिक्षा देने के लिए ये दासवत आचरण कर रहे हैं, सेवक के रूप में आचरण करके अपने प्रिय आराध्य भगवान की आराधना करते हैं नृत्य गीत के साथ। तो इस प्रकार जब गोप कुमार को यह अनुभव हुआ कि शिवजी भगवान से अभिन्न है, तो वो उनके जो पार्षदगण जा रहे थे शिवजी के साथ, उनके साथ वो हो लिए गोप कुमार, वो सब चल रहे थे। और जब चल रहे थे नंदीश्वर के साथ ये गोप कुमार की ये बातचीत हो रही थी, तो पुनः वो उनके गण में शामिल हो गए गोप कुमार। तो शिवजी के जो भक्तगण थे उन्होंने उनका स्वागत किया अपने दल में, स्वागत किया उनका। और इस प्रकार गोप कुमार चल रहे हैं तो शिवजी थोड़ी देर के लिए रुक गए। वो थोड़ी देर के लिए विश्राम करना चाह रहे थे, क्योंकि चल रहे थे, जा रहे थे कैलाश, तो थोड़ी देर के लिए रुक गए। तो उसी समय दूर से कुछ वाद्य की ध्वनि सुनाई पड़ी और उसके साथ साथ संगीत की ध्वनि भी सुनाई पड़ी। वाद्य और संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ी तो गोप कुमार आश्चर्यचकित हो गए कि ये वाद्य और संगीत की ध्वनि कहां से आ रही है। तो धीरे धीरे वो ध्वनि निकटतर हुई और जब दो ध्वनि निकटतर हुई तो गोप कुमार ने देखा कि बहुत सुंदर दिव्य पुरुष जिनके चार हाथ हैं, सर्वे चारु चतुर्भुजा, इस सारे के सारे चतुर्भुज हैं और देखने में बहुत सुंदर है और उनकी आयु किशोर आयु है। किशोर आयु 10 वर्ष, 11 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष से अधिक। तो किशोर आयु में है अर्थात युवावस्था का पूर्व अवस्था, किशोर अवस्था, और देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। सभी के चार चार हाथ हैं और विभिन्न प्रकार के अलंकारों से वो सुसज्जित हैं। गले में सद्य पुष्प की मालाएं हैं। तो इस प्रकार इस दिव्य पुरुष भगवान का नाम कीर्तन करते हुए आ रहे हैं, वाद्य बज रहा है तो आ रहे हैं। और उनके साथ गोप कुमार ने देखा कि सनक सनातन आदि जो चतु कुमार हैं वे भी उनके साथ हैं। इन चतु कुमारों को गोप कुमार ने दर्शन किया था तपोलोक में, इसलिए वो पहचान गए कि चार कुमार जो तपोलोक में उन्होंने देखा था ये भी इनके साथ हैं। तो गोप कुमार सोचने लगे कि ये लोग कौन है जो चतुर्भुज वाले हैं, देखने में इतने सुंदर हैं। यद्यपि शिवजी की टोली में कुछ चतुर्भुज वाले भी थे, जैसे गणेश जी हैं, गणेश भी चतुर्भुज होते हैं, किंतु ये लोग सब इतना सुंदर नहीं थे। ये जो लोग आ रहे थे अभी चतुर्भुज वाले, ये सबसे सुंदर थे। तो गोप कुमार ने सोचा कि ये लोग कौन है, कहां से आए हैं, ये जानने के लिए उनके मन में उत्सुकता हुई। और शिव जी तो अंतर्यामी हैं, दूसरों के मन के भाव को समझ सकते हैं। उसी प्रकार उनकी पत्नी गौरी अर्थात पार्वती भी दूसरों के हृदय की बात को समझ सकती है, क्योंकि वो दुर्गा देवी है, भौतिक प्रकृति है। तो पार्वती ने इशारा किया गणेश को कि गोप कुमार के मन में ये उत्सुकता उत्पन्न हुई, ये लोग कौन है, तो इनको थोड़ा समझा। ये इशारा में कहा, ऐसे बाहर नहीं बोली पार्वती, इशारा में कहा कि उनको समझा। तो गणेश जी बोल रहे हैं गोप कुमार से, एते वैकुंठनाथ से श्रीकृष्ण से महाप्रभु, कि ये जो लोग आप देख रहे हैं ये सब वैकुंठनाथ भगवान श्री कृष्ण नारायण उनके ही अनुचर वर्ग है। पार्षदा प्राप्त सारूप्या वैकुंठात आगता किला, तो ये सब भगवान विष्णु के पार्षद हैं और ये लोग सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मुक्ति पांच प्रकार के हैं, तो एक तो सायुज मुक्ति जो ये मुक्ति धाम को प्राप्त होते हैं सायुज मुक्ति वाले, किंतु वैष्णवगण सायुज मुक्ति को ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान की ज्योति में लीन होना ये वैष्णवगण या भक्तगण इस मुक्ति को ग्रहण नहीं करते, किंतु और जो चार प्रकार की मुक्ति सारूप्य सालोक्य सामीप्य और शास्त्री, ये चार प्रकार की मुक्ति वैष्णव या भक्तगण प्राप्त होते हैं। तो गणेश जी ने कहा कि ये लोग सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हुए हैं और ये लोग वैकुंठ से आ रहे हैं, इस वैकुंठ के अधिवासी हैं भगवान के पार्षद, ये वैकुंठ से सब आए हुए हैं। तो उसी समय गणेश जी ने गोप कुमार को पुनः दिखाया वहीं से, जो ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मांड है, तो हमारा ये जो ब्रह्मांड है ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है, जिसमें हमारे ब्रह्मा चतुर्मुख है, चतुर्मुख ब्रह्मा है, किंतु इस प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इस भौतिक सृष्टि में अनंत कोटि ब्रह्मांड, और हर ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा है। इसका अर्थ है कि हर ब्रह्मांड में 14 लोक है, जिस प्रकार हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक है, पृथ्वी लोक बीचों बीच है, ऊपर 7 लोक है, नीचे ऊपर 6 लोक है और नीचे 7 लोक है, पृथ्वी को मिलाकर के 7 लोक है। तो हर ब्रह्मांड में एक एक पृथ्वी लोक है, वहां भी मनुष्य होंगे हर ब्रह्मांड में। तो हमारे ब्रह्मा चतुर्मुख है, किंतु दूसरे जो ब्रह्मांड है सब हमारे ब्रह्मांड से बड़े बड़े ब्रह्मांड है, और उसके ब्रह्मा से बड़े बड़े ब्रह्मा है, उनके मुख भी अधिक है। जैसे हमारे ब्रह्मा के 4 मुख हैं, तो गणेश जी ने दिखाया गोप कुमार को, देखो दूसरा ब्रह्मांड है उसके ब्रह्मा के 8 मुख है, और ये इससे 2 गुना बड़ा ब्रह्मांड है इस ब्रह्मांड से, इसलिए ब्रह्मा जी को 8 मुख होना पड़ता है उसको संभालने के लिए। फिर दिखाया और एक ब्रह्मांड जिसके ब्रह्मा के 16 मुख, तो वो उससे भी ज्यादा बड़ा ब्रह्मांड है। तो उस प्रकार और एक ब्रह्मांड दिखाया जिसके ब्रह्मा के 32 मुख है, इस प्रकार सब बढ़ता जा रहा था ब्रह्मा जी के मुख और ब्रह्मांड का आयतन। और गणेश जी ने दिखाया गोप कुमार को, देखो हर ब्रह्मांड में ये जो वैकुंठ के अधिवासी यहां आए हुए हैं, इस प्रकार अनेक वैकुंठ के अधिवासी अर्थात वैकुंठ के भक्त भगवान के, ये हर ब्रह्मांड में जाते हैं। और क्यों जाते हैं हर ब्रह्मांड में, क्या करने के लिए, उनका क्या काम है हर ब्रह्मांड में, तो कहते हैं कि एते ही मृत्युकालोपि जीवाग्रे श्रोत्र वर्तमान। तो ये इसलिए जाते हैं हर ब्रह्मांड में ये भगवान के पार्षदगण विष्णु पार्षदगण, कि जो कोई भी व्यक्ति मृत्यु काल में जिह्वाग्र में जिह्वा के अग्रभाग में कथनचित सकृत आप्तेन नामाभासेन च कोई भगवान का नाम ग्रहण करता है मृत्यु काल में, जीवाग्र में भगवान का नाम ले लेता अथवा स्वत्र वर्तमवा, अगर नाम नहीं ले सकता, मुख नहीं खोल पा रहा है, तो हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति में ये प्रथा है कि मृत्यु के समय व्यक्ति यदि भगवान का नाम नहीं ले पाता है तो लोग क्या करते हैं, उसके पास बैठकर भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं अथवा श्रीमद् भागवत या गीता का पाठ करते हैं, जिससे कि उसका भगवान का स्मरण हो जाए और वो मुक्ति को प्राप्त हो जाए। तो यहां पर गणेश जी कह रहे हैं कि ये जो वैष्णव वैकुंठ पार्षद गण भिन्न भिन्न ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, इनका काम यही है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय अपनी जीवा से भगवान का नाम किसी भी तरह उच्चारण कर देता, संकेत्य परिहास्यं वा स्थोभं हेलन एव वैकुंठ नाम ग्रहणं अशेष अगहरं विदु, कोई संकेत में हो या परिहास में हो, किसी अवहेलना पूर्वक हो, कोई भगवान का नाम ले लेता, जैसे अजामिल ने किया था, जिसको लेने के लिए यमदूत आ गए थे किंतु उसके मुख से नारायण का नाम उच्चारित हो गया, अपने पुत्र को बुला रहा था संकेत में, फिर भी उसकी रक्षा हो गई, उसके पाप का विनाश हो गया, उसकी रक्षा हो गई मृत्यु से, क्योंकि विष्णुदूत आकर वहां पहुंच गए थे भगवान का नाम उच्चारण श्रवण करके। तो ये विष्णुदूत तो यही करते रहते हैं, ये हर ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, और कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम किसी भी तरह ले लेता है या सुन लेता है तो ये लोग जाकर पहुंच जाते हैं उसको यमदूतों से रक्षा करने के लिए, यही विष्णुदूतों का काम है, इसलिए भ्रमण करते हैं हर ब्रह्मांड। भगवान कृष्ण भयात प्रांत तन्नत भक्तिं उपाल भक्ति उज्ज्वलम। और ये विष्णु दूतगण यद्यपि वैष्णव का कोई भय नहीं होता है, वैष्णवगण कोई भय नहीं करते, किसी भी तरह का भय नहीं करते, क्यों भय नहीं करते, क्योंकि भगवान के ऊपर उनका पूर्ण विश्वास है, भगवान उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। और भगवान कृष्ण ने कहा भी है अर्जुन प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति, अर्जुन तुम दृढ़ता पूर्वक घोषणा कर दो संसार में मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होगा, भगवान स्वयं आश्वासन दे रहे, इसलिए भक्तों का कोई भय नहीं है, वो निर्भय। किंतु ये विष्णुदूतगण ये विचरण करते हैं भगवान के भक्तों को निर्भय बनाने के लिए, तो फिर भक्तों का कौन सा भय रह जाता, यदि भक्त निर्भय हैं, फिर ये विष्णुदूतगण कैसे निर्भय करते हैं भक्तों को, भय रहित कैसे करेंगे, उनका भय तब क्या है, क्योंकि भक्तों का एक भय है, क्या भय है, भक्ति में बाधा, भक्ति मार्ग में जो बाधाएं उत्पन्न हो जाती है उसके लिए भक्तों में भय बना रहता है। और ये विष्णुदूतगण क्या करते हैं, भक्तों की बाधाएं भी दूरीभूत कर देते हैं, यही इनका काम है, तो भक्तों को निर्भय बना देते हैं इस प्रकार कृपा करके उनके ऊपर। सर्वत्र विचरंती आत्मेच्छया भक्तेक वल्लवा, इसलिए ये विष्णु दूतगण ये सर्वत्र विचरण करते हैं और अपनी इच्छा से विचरण करते हैं, इसमें कोई बाध्य बाधकता नहीं है, कोई बाध्य होकर जाते हैं ऐसा नहीं, अपनी स्व इच्छा से विचरण करते हैं भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनकी भक्ति में जो बाधाएं उसको दूर करने के लिए और अंत में यमदूतों से उनकी रक्षा करने के लिए। तो ये विचरण करते रहते हैं, इसलिए ये विष्णुदूतगण जो वैकुंठ से आए हुए हैं ये भक्तों के अति प्रिय हैं। भक्त एक वल्लवा, ये भक्तों के अति प्रिय है ये विष्णुदूतगण। और ये विष्णुदूतगण जो वैकुंठ में रहते हैं ये सदा सर्वदा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और निर्भय होकर यत्र तत्र विचरण करते हैं। किंतु यदि आप वैकुंठ के बारे में और अधिक श्रवण करना चाहते हैं, गणेश ने कहा गोप कुमार से, तो हमारे पिता शिवजी से आप श्रवण कर सकते हैं। यह आपको और विस्तार पूर्वक बताएंगे वैकुंठ के बारे में। तो यह कहकर गणेश जी चुप हो गए। तो गोप कुमार ने सोचा कि जो वैकुंठ लोक भगवान का धाम है वहां जाने के लिए हम योग्य नहीं है, हम कैसे भगवान के धाम में जा सकते हैं जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के साथ लीला करते रहते हैं। इसलिए वो भगवान से विरह अनुभव करने लगे गोप कुमार और रोने लगे कि कैसे वो वैकुंठ को प्राप्त होंगे, उनकी कोई योग्यता नहीं है, तो कैसे वैकुंठ को प्राप्त होंगे। इस प्रकार भगवान से विरह अनुभव करते हुए रोते हुए वो मूर्छित हो गए, मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े गोप कुमार। तो शिवजी जो वहां उपस्थित थे, जो विश्राम कर रहे थे उस समय, और वैकुंठ के अधिवासीगण आ गए थे वहां, तो अब शिवजी गोप कुमार को उठा करके अपनी गोद में ले लिए, कृपा करके, क्योंकि शिवजी बहुत कृपालु हैं, किसी का दुख नहीं देख सकते, और उनको आशुतोष भी इसलिए कहा गया है कि तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं। तो गोप कुमार को उठा करके अपनी गोद में ले लिया और उनको आश्वस्त किया, अब शिवजी वैकुंठ के बारे में बताने जा रहे हैं गोप कुमार से। अब शिवजी के मुख से हम कल श्रवण करेंगे वैकुंठ के बारे में। हरे कृष्ण।